इसराइल का पत्रकारों के खिलाफ युद्ध। जब आप कोई अपराध करते हैं तो आप कैमरे में कैद नहीं होना चाहते। गाजा में पत्रकार एक नरसंहार के आखिरी जीवित गवा रहे हैं। ऐसे लोग जो सबसे भयानक परिस्थितियों में फंसे हुए थे, अपने लोगों, दोस्तों और परिवारों के कत्लेआम को दस्तावेज करने के लिए मजबूर थे। उनके पास पीछे हटने का कोई विशेषाधिकार नहीं था। जिन सड़कों को उन्होंने फिल्माया, वे उनकी अपनी सड़कें थीं। जिन अंत्येष्टियों को उन्होंने फोटो खींचकर दर्ज किया, वे उनके पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों की थीं। उन्होंने उसी घटते हुए भोजन भंडार से खाया, उसी दूषित पानी को पिया और उसी अस्थायी आश्रयों में सोए। उनका हर प्रसारण, हर तस्वीर, हर सोशल मीडिया पोस्ट जो उन्होंने साझा की, वह मिटाने की मशीनरी के खिलाफ एक विद्रोह का कार्य था। और एक एक करके उन्हें शिकार बनाकर मार डाला गया। यह युद्ध का कोहरा नहीं है, यह उन लोगों का सुनियोजित विनाश है जो इसे उजागर करने की हिम्मत करते हैं। सांख्यिकीय सबूत। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा संघर्ष ने इतिहास में दर्ज पत्रकारों की सबसे अधिक मृत्यु दर उत्पन्न की है। प्रति वर्ष 130.81 पत्रकार मारे गए। अन्य युद्धों में यह आंकड़ा शायद ही कभी एकल अंकों से अधिक होता है। वैश्विक संघर्षों में प्रति वर्ष पत्रकारों की मृत्यु की मानक विचलन इतनी कम है कि गाजा का आंकड़ा 96.82 का जेड स्कोर उत्पन्न करता है, जो वैज्ञानिक विश्लेषण में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 सिग्मा थ्रेशोल्ड से कहीं अधिक है। साधारण भाषा में इसका कोई सांख्यिकीय मौका नहीं है कि यह यादृच्छिक हो। यह एक विसंगति है और गाजा में विदेशी प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध के संदर्भ में यह सीधे तौर पर जानबूझकर निशाना बनाने की ओर इशारा करता है। युद्ध अवधि, वर्ष मारे गए पत्रकार, पत्रकार मारे गए वर्ष। डैश चीनी गृहयुद्ध 4.34-0.46, कोरियाई युद्ध 3.0951.62, वियतनाम युद्ध 19.5063-3.23, अल्जीरिया युद्ध 7.6840.52, लेबनानी गृहयुद्ध 15.5916-1.03, सोवियत अफगान युद्ध 9.1770.76, पहला खाड़ी युद्ध 0.5835.17, युगोस्लाव युद्ध 10.3814-1.35, पहला चेचन युद्ध 1.7363.47, दूसरा चेचन युद्ध 9.7060.62, इराक युद्ध 8.8431-3.51, अफगानिस्तान युद्ध 19.7523-1.16, दूसरा कॉन्गो युद्ध 4.9640.81, दारफुर संघर्ष 22.1710-0.45, सीरियाई गृहयुद्ध 14.4935-2.42, लीबियाई गृहयुद्ध 2011-0.692-2.90, यमनी गृहयुद्ध 10.5212-1.14, गाजा संघर्ष 1.85242-130.81, 11 अगस्त 2025 तक चल रहे संघर्ष। कानूनी निहितार्थ। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून असंदिग्ध है। अतिरिक्त प्रोटोकॉल आई 1977 का अनुच्छेद 79 स्पष्ट रूप से पत्रकारों को नागरिकों के रूप में संरक्षण देता है, जब तक कि वे सीधे तौर पर शत्रुता में भाग न लें। जिनेवा कन्वेंशन 4 का अनुच्छेद 27 सभी नागरिकों के लिए मानवीय व्यवहार की मांग करता है। अतिरिक्त प्रोटोकॉल आई का अनुच्छेद 51 नागरिकों पर किसी भी हमले को प्रतिबंधित करता है। ICC के रोम संविधान का अनुच्छेद 82BI नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने को युद्ध अपराध के रूप में परिभाषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का नियम 34 पत्रकारों पर हमलों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। ये संरक्षण मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 19 द्वारा और मजबूत किए गए हैं, जो जानकारी खोजने, प्राप्त करने और साझा करने के अधिकार की गारंटी देते हैं। गाजा में ये कानून तार तार हो रहे हैं। विदेशी प्रेस पर सरकारी प्रतिबंध, लगभग हर प्रमुख स्थानीय पत्रकार की लक्षित हत्या के साथ मिलकर कोई संयोग नहीं है, यह एक तमन की रणनीति है। केस स्टडीज। ये नाम केवल हताहतों की सूची में प्रविष्टियां नहीं हैं। ये जीवन है जो वाक्य के बीच में ही कट गए। ऐसे लोग जो राइफल के बजाय कैमरे ले गए, गोला बारूद के बजाय माइक्रोफोन। प्रत्येक ने नरसंहार से बचने और इसे दुनिया के लिए दस्तावेज करने का संभव दोहरा बोझ वहन किया। वे दूरस्थ कार्यालयों की सुरक्षा से काम नहीं करते थे, उनके कार्यालय बमबारी के तहत सड़कें, घायलों से भरे अस्पताल के गलियारे और मकानों के मलबे थे जो कब्रों में बदल गए थे। इसराइल के पत्रकारों के खिलाफ युद्ध के दायरे और मंशा को समझने के लिए हमें उन लोगों की कहानियों से शुरू करना होगा जिन्हें चुप कराया गया सांख्यिकी के रूप में नहीं बल्कि इंसानों के रूप में। हुस्सम शबात। हुस्सम शबात 23 वर्ष के थे, उत्तरी गाजा में अल जजीरा मुबाशर के लिए एक फलस्तीनी संवाददाता और अमेरिका आधारित ड्रॉपसाइट न्यूज ने योगदानकर्ता। बेत हनून में जन्मे, वे घेराबंदी में पले बढ़े, लेकिन उनके पास सामान्य सपने थे, स्नातक होने, काम करने, किसी दिन बिना चेकपॉइंट और कर्फ्यू के जीने का। ये सपने 7 अक्टूबर 2023 के बाद बदल गए। 18 महीनों तक हुस्सम ने उत्तरी गाजा में युद्ध की भयावहता को मिनट दर मिनट दस्तावेज किया। उन्होंने हवाई हमलों, सामूहिक विस्थापन, अकाल और अपने परिवार के रेस्तरा के विनाश को कवर किया। उन्होंने 30 से अधिक रिश्तेदारों को खोया, फिर भी उन्होंने काम करना कभी नहीं रोका। वे अक्सर स्कूलों में, फुटपाथों पर या तंबुओं में सोए। उन्होंने महीनों तक भूख सहन की। उन्हें नियमित रूप से मौत की धमकियां मिलती थीं। 24 मार्च 2025 को इसराइल द्वारा एक संक्षिप्त युद्ध विराम समाप्त करने के कुछ ही दिनों बाद हुस्सम एक निवासी का साक्षात्कार ले रहे थे, इससे पहले कि वे बेत लाहिया में इंडोनेशियाई अस्पताल में लिव प्रसारण के लिए जाएं। उन्होंने अपनी स्पष्ट रूप से चिन्हित प्रेस वेस्ट पहनी थी। उनकी कार पास में खड़ी यात्रा के लिए तैयार थी। एक इसराइली ड्रोन ऑपरेटर लगभग निश्चित रूप से उन्हें पहचानने में सक्षम ने एक एकल मिसाइल दागी। यह उनकी कार के पास गिरी जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। पत्रकार अहमद अल बुर्श, जो केवल 50 मीटर दूर थे, उनके साथ शामिल होने वाले थे। यह हमला यादृच्छिक तोपखाने का नहीं था, यह एक उड़ने वाली, अवलोकन करने वाली मशीन से जानबूझकर की गई हत्या थी। उनके अंतिम शब्द, जो उनकी मृत्यु के लिए तैयार किए गए थे, यदि आप यह पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे मार दिया गया है, संभवतः लक्षित रूप से इसराइली कब्जा बलों द्वारा। जब यह सब शुरू हुआ मैं केवल 21 वर्ष का था, एक कॉलेज छात्र जिसके पास हर किसी की तरह सपने थे। पिछले 18 महीनों में मैंने अपने जीवन का हर पल अपने लोगों को समर्पित किया। मैंने उत्तरी गाजा की भयावहता को मिनट दर मिनट दर्ज किया। दुनिया को वह सच्चाई दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित था जिसे वे दफन करने की कोशिश कर रहे थे। मैं फुटपाथों पर, स्कूलों में, तंबुओं में, जहां कहीं भी हो सका सोया। हर दिन जीवित रहने की लड़ाई थी। मैंने महीनों तक भूख सहन की, फिर भी मैंने कभी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। भगवान के नाम पर मैंने एक पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। मैंने सच्चाई की रिपोर्ट करने के लिए सब कुछ जोखिम में डाला और अब मैं आखिरकार शांति में हूँ, जो मैंने पिछले 18 महीनों में नहीं जाना। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं फलस्तीनी कारण में विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि यह भूमि हमारी है और मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान यह था कि मैं इसके बचाव में मरूं और इसके लोगों की सेवा करूं। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गाजा के बारे में बात करना बंद न करें। दुनिया को दूसरी ओर देखने न दें। लड़ते रहें, हमारी कहानियां सुनाते रहें जब तक फलस्तीन स्वतंत्र न हो। आखिरी बार के लिए हुस्सम शबात, उत्तरी गाजा से। फातिमा हसौना। फातिमा हसौना 25 वर्ष की थी, गाजा शहर की मूल निवासी और इस क्षेत्र में काम करने वाली कुछ बची हुई महिला फोटो पत्रकारों में से एक। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज से मल्टीमीडिया में स्नातक, उनके पास विनाश के बीच लचीलापन कैप्चर करने की तीव्र नज़र थी। उनकी तस्वीरें सिर्फ छवियां नहीं थी, वे घेराबंदी में जीवन के टुकड़े थे। बच्चे बमबारी वाली सड़कों पर एक दूसरे का पीछा करते हुए, महिलाएं एक नष्ट रसोई के खोल में रोटी गूंथती हुई, एक पिता अपने बेटे के छोटे शरीर को सफ़ेद कफन में लपेटे हुए। उनके काम अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट्स में और 2025 के वृत्तचित्र अपनी आत्मा को अपने हाथ में रखें और चले में दिखाई दिए, जिसे कांस के लिए चुना गया था। वे सगाई कर चुकी थी और कभी कभी दोस्तों के साथ मजाक करती थी कि वे किस तरह की शादी की पोशाक पहन सकती हैं, भले ही वे अपनी कैमरा खतरनाक क्षेत्रों में ले जाती थी। अप्रैल 2025 में उन्होंने वृत्तचित्र के निर्देशक को बताया कि वे कांस में स्क्रीनिंग में भाग लेंगी लेकिन गाजा वापस लौटेंगी, क्योंकि मेरे लोगों को मेरी यहाँ जरूरत है। 16 अप्रैल 2025 को इसराइली मिसाइलों ने उत्तरी गाजा में एक 5 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर उनके परिवार के अपार्टमेंट को निशाना बनाया। फातिमा, उनके परिवार के 6 सदस्य और उनकी गर्भवती बहन तुरंत मारे गए। फोरेंसिक आर्किटेक्चर ने निष्कर्ष निकाला कि यह हमला पार्श्विक क्षति नहीं था बल्कि उनके अपार्टमेंट पर सीधा प्रहार था। उन्होंने एक बार पोस्ट किया था, अगर मैं मर जाऊं तो मैं एक जोरदार मौत चाहती हूं। उन्हें वह मिली। बस दुनिया को सुनना होगा। अनस अल शरीफ। अनस अल शरीफ 28 वर्ष के थे, गाजा में अल जजीरा के सबसे प्रसिद्ध संवाददाताओं में से एक। जबालिया शरणार्थी शिविर से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नाकाबंदी में बिताई थी। दिसंबर 2023 में उनके पिता एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए। दोस्तों ने उन्हें उत्तरी गाजा खाली करने का आग्रह किया। उन्होंने मना कर दिया। अगर मैं चला गया, उन्होंने कहा, तो कहानी कौन सुनाएगा? अनस की रिपोर्टिंग एक्स और टेलीग्राम के माध्यम से लाखों तक पहुंची। उन्होंने बमबारी के तुरंत बाद फिल्माया। उनकी आवाज़ स्थिर रही, भले ही विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही थी। उन्होंने भूख से ग्रस्त मोहल्लों, अस्थायी अस्पतालों और अंत्येष्टि जुलूसों से रिपोर्ट की। वे गाजा के विद्रोह का प्रतीक बन गए थे और एक स्पष्ट निशाना। 10 अगस्त 2025 को वे और 5 अन्य पत्रकार अल-शिफा अस्पताल के पास एक तंबू में थे, जो प्रेस के लिए एक जाना माना स्थान था। एक इजरायली मिसाइल ने सीधे हमला किया, जिसमें सभी 6 मारे गए। उनका अंतिम संदेश, जो अप्रैल 2025 में तैयार किया गया था, उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। यह मेरी वसीयत और मेरा अंतिम संदेश है। यदि ये शब्द आप तक पहुंचते हैं, तो जान लें कि इसराइल मुझे मारने और मेरी आवाज़ को चुप करने में सफल रहा है। सबसे पहले, आप पर शांति और अल्लाह की दया और आशीर्वाद हो। अल्लाह जानता है कि मैंने अपने लोगों के लिए एक समर्थन और आवाज़ बनने के लिए हर संभव प्रयास और अपनी सारी ताकत दी, जब से मैंने जबालिया शरणार्थी शिविर की गलियों और सड़कों में जीवन के लिए अपनी आँखें खोली। मेरी आशा थी कि अल्लाह मेरी उम्र बढ़ाए ताकि मैं अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अपनी मूल शहर कब्जे वाले अस्कलान अल मजदल में वापस जा सकूं। लेकिन अल्लाह की इच्छा पहले थी और उनका फरमान अंतिम है। मैंने दर्द को उसके हर विवरण में जिया, पीड़ा और हानि को कई बार चखा, फिर भी मैंने कभी भी सच्चाई को वैसा ही बताने में संकोच नहीं किया, बिना विकृति या जालसाजी के, ताकि अल्लाह उन लोगों के खिलाफ गवाही दे जो चुप रहे, जिन्होंने हमारे कत्ल को स्वीकार किया, जिन्होंने हमारी सांसों को दबाया और जिनके दिल हमारे बच्चों और महिलाओं के बिखरे हुए अवशेषों से नहीं हिले, बिना कुछ किए उस नरसंहार को रोकने के लिए हमारे लोग 1.5 साल से अधिक समय से झेल रहे हैं। मैं आपको फलस्तीन सौंपता हूँ, मुस्लिम दुनिया के ताज का रत्न, इस दुनिया में हर स्वतंत्र व्यक्ति का दिल की धड़कन। मैं आपको इसके लोगों, इसके उत्पीड़ित और निर्दोष बच्चों को सौंपता हूँ, जिन्हें कभी सपने देखने या सुरक्षा और शांति में जीने का समय नहीं मिला। उनके शुद्ध शरीर हजारों टन इसराइली बमों और मिसाइलों के नीचे कुचल दिए गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और दीवारों पर बिखर गए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जंजीरों को आपको चुप न करने दें, नहीं सीमाएं आपको रोकें। इस भूमि और इसके लोगों की मुक्ति के लिए पुल बने, जब तक कि गरिमा और स्वतंत्रता का सूरज हमारी चुराई गई मातृभूमि पर न उगे। मैं आपको अपने परिवार की देखभाल सौंपता हूँ, मेरी प्यारी बेटी शम, मेरा प्यारा बेटा सलाह, मेरी प्यारी माँ और मेरी जीवन भर की साथी, मेरी प्यारी पत्नी सलाह बयान। उनके साथ खड़े हों, उनका समर्थन करें। अगर मैं मर जाऊं, तो मैं अपने सिद्धांतों पर अडिग मरूंगा। मैं अल्लाह के सामने गवाही देता हूँ कि मैं उनके फरमान से संतुष्ट हूँ, उनसे मिलने का निश्चय है और यह यकीन है कि जो अल्लाह के पास है वह बेहतर और शाश्वत है। हे अल्लाह, मुझे शहीदों में स्वीकार कर गाजा को मत भूलो और मुझे अपनी सच्ची प्रार्थनाओं में क्षमा और स्वीकृति के लिए मत भूलो। अनस जमाल अल शरीफ, 6 अप्रैल 2025। निष्कर्ष: ये यादृच्छिक मौतें नहीं थी, ये इंसान थे। बेटे, बेटियां, माता पिता, दोस्त जो घेराबंदी, बमबारी और अकाल के तहत काम कर रहे थे ताकि दुनिया को वास्तविक समय में नरसंहार दिखा सकें। उन्होंने अपने पड़ोसियों की तरह ही कम भोजन खाया, उसी मृतकों के लिए शोक मनाया और उसी मलबे से भरी सड़कों पर चले। और उन्होंने अपनी कैमरों को तब तक चलाते रखा जब तक कि वे किसी और के फुटेज का विषय नहीं बन गए। जब कोई राज्य इस पैमाने पर पत्रकारों को मारता है, तो वह व्यक्तियों को चुप नहीं कर रहा, वह सच्चाई की हत्या कर रहा है। हुस्सम शबात, फातिमा हसौना, अनस अल शरीफ और सैकड़ों अन्य की मौतें एक समन्वित अभियान में जानबूझकर किए गए कार्य हैं, ताकि गाजा में हो रही घटनाओं का रिकॉर्ड मिटाया जा सके। इतिहास उन्हें याद रखेगा। एकमात्र सवाल यह है कि क्या दुनिया न्याय की तलाश करके उनकी इज्जत करेगी, या उन्हें उस मौन में छोड़ देगी जो उनके हत्यारों ने थोपने की कोशिश की।